السلام علیکم، یہ پارٹ 17 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 17. جیسے ہی اس کے پھیپڑوں میں تازہ ہوا گئی، اس کے دماغ کی باقی بند رگیں بھی کھلنا شروع ہو گئیں. عمران نے آنکھوں سے گاگل اٹھا کر سر پر رکھ لی اور پھر خود کو گردن تک ریت میں دھسا ہوا پا کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. اسے اب اپنے سارے جسم میں زندگی کی لہریں سرایت کرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، اور اسے کمر میں رسی بندی ہوئی ہونے کا بھی احساس ہو رہا تھا. عمران نے کوشش کر کے ریت سے دوسرا ہاتھ بھی باہر نکال لیا. اس نے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا. اس کے چاروں طرف ریت کا وسیع سمندر تھا اور وہاں اسے اپنا کوئی ساتھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اپنے ساتھیوں کو وہاں نہ پا کر ایک لمحے کے لیے عمران کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا. اس کے ساتھی وہاں نہیں تھے، اور اگر وہ اس کے ساتھی رسی سے بندھے ہوئے تھے تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ سب ریت میں دھسے ہوئے تھے. عمران نے رسی سے اپنے ساتھیوں کو 5-5 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر باندھا تھا تاکہ انہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلنے میں دشواری نہ ہو. رسی اس کے کمر میں ہونے کا مطلب تھا کہ اس کے ساتھی بدستور اس کے ساتھ ہی بندھے ہوئے تھے. عمران نے دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی سے اپنے گرد موجود ریت ہٹانی شروع کر دی. اس کے سارے جسم میں جان آ گئی تھی، اس لیے وہ جسم کو ریت میں مخصوص انداز میں حرکت بھی دے رہا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد خود کو ریت سے نکال سکے. تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ریت سے باہر نکل آیا. دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور اب چونکہ عمران کا جسم حرکت میں آ چکا تھا اس لیے اسے ریت بے حد گرم محسوس ہو رہی تھی، جس سے اسے اپنا جسم جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ریت سے باہر نکلتے ہی عمران نے کمر میں بندھی ہوئی رسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچا، جس کا اگلا حصہ ریت میں ہی تھا. رسی بے حد سخت تھی، اور رسی کی سختی سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے اگلے حصے سے کوئی بندھا ہوا ہے. عمران نے پوری قوت سے رسی کو کھینچا تو سامنے سے ریت اوپر اٹھتی ہوئی دکھائی دی، اور پھر ایک انسانی جسم باہر نکل آیا. وہ صفدر تھا، اس کے منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں پر گاگل بھی تھی. صفدر کو ریت سے باہر آتے دیکھ کر عمران تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس پر جھک گیا. وہ صفدر کے دل کی دھڑکن اور اس کی نبضیں چیک کرنے لگا. دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان بھر آیا. صفدر بے ہوش تھا لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھیں، البتہ اس کی دل کی دھڑکن اور نبضیں چلنے کی رفتار بے حد سست تھی، لیکن عمران کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں. صفدر کو ہوش میں لانے سے پہلے عمران اپنے باقی ساتھیوں کو جلد سے جلد ریت سے باہر نکالنا چاہتا تھا. چنانچہ اس نے صفدر کو چھوڑا اور اس کی کمر سے بندھی ہوئی رسی پکڑ کر پوری قوت سے باہر کھینچی شروع کر دی. تھوڑی ہی دیر میں وہ ریت میں دفن تنویر اور پھر کیپٹن شکیل کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا. وہ دونوں بھی زندہ تھے لیکن ان کی حالت بے حد خراب تھی. عمران نے رسی کھینچ کھینچ کر خاور اور صدیقی کو بھی اسی طرح ریت سے باہر نکال لیا تھا. عمران نے صرف ان کی چلتی ہوئی سانسیں چیک کی تھی، کیونکہ ابھی جولیا، نعمانی اور چوہان باقی تھے جو ریت میں دھسے ہوئے تھے. عمران ان سب کو نکال کر اطمینان سے انہیں چیک کرنا چاہتا تھا. عمران نے صدیقی کے جسم سے بندھی ہوئی رسی کھینچی تو اچانک اسے جھٹکا سا لگا اور اس کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی رسی آ گئی. ریت سے ٹوٹی ہوئی رسی نکلتے دیکھ کر عمران کے چہرے پر بے پناہ بوکھلاہٹ ابھر آئی. او وہ تینوں کہاں گئے؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے اس طرف چھپتا جہاں اس کے خیال کے مطابق جولیا کو ہونا چاہیے تھا. اس نے جھک کر پاگلوں کی طرح وہاں سے دونوں ہاتھوں سے ریت ہٹانی شروع کر دی. صفدر اور باقی سب ریت میں 2-2 فٹ نیچے سے نکلے تھے. وہ زیادہ گہرائی میں نہیں تھے، اور چونکہ ان کے چہروں پر کپڑے بندھے ہوئے تھے यही वजह थी कि अभी तक इनकी सांस चल रही थी, वरना शायद वो रेल में दबे होने की वजह से हलाक हो गए होते। अब इमरान को जूलिया चौहान और नौमानी की फिक्र हो रही थी। मोंडर में चकराते हुए न जाने रस्सी कैसे टूट गई थी। रस्सी टूटने की वजह से जूलिया चौहान और नौमानी इनसे अलग हो गए थे और अब वो न जाने कहाँ थे। इमरान तेजी से इर्द गिर्द की रेत हटाता जा रहा था, लेकिन वहाँ न जूलिया थी, न चौहान और न ही नौमानी। इन तीनों के गायब होने से इमरान बेहद परेशान हो गया था। ये तीनों कहाँ चले गए हैं, इमरान ने परेशान होते हुए कहा। वो चंद लम्हे परेशान नजरों से इधर उधर देखता रहा, फिर वो वापस अपने इन साथियों की तरफ आ गया जिन्हें वो रेस से निकाल चुका था। इसने बारी बारी इन सबको चेक किया, सबकी हालत खराब थी। इमरान ने इनकी हड्डियों को भी चेक किया था कि कहीं मोंडर में चकराते हुए इनमें से किसी की कोई हड्डी न टूट गई हो, लेकिन इन सबकी हड्डियां सलामत थी। इमरान इन्हें जल्द से जल्द होश में लाना चाहता था। इसने सबसे पहले सफदर को होश में लाने के लिए इसके मुंह और नाक पर हाथ रख दिया। जैसे ही सफदर का दम घुटा, इसके जिस्म को यकबारगी जोरदार झटका लगा। जैसे ही इसके जिस्म को झटका लगा, इमरान ने इसके मुंह और नाक से हाथ हटा दिए। इसी लम्हे सफदर ने आंखें खोल दी और यूं सांस लेने लगा जैसे मीलों दौड़ दौड़ लगाकर आ रहा हो। इसे होश में आते देखकर इमरान फौरन उठकर तनवीर की तरफ बढ़ गया और इसके मुंह और नाक पर हाथ रखकर इसका सांस रोक दिया। चंद ही लम्हों में तनवीर को भी जोरदार झटका लगा और उसने भी यकलक आंखें खोल दी। इमरान ने इसके मुंह से हाथ हटाए तो इसका सीना लोहार की धोखने की तरह से चलना शुरू हो गया। इमरान उठा और कैप्टन शकील के पास गया। इसने बारी बारी इन सबके नाक और मुंह पर हाथ रखते हुए इनके सांस रोककर इन्हें होश दिलाया और गौर से इनकी तरफ देखने लगा। वो सब होश में आ चुके थे, लेकिन इनमें जैसे उठने की जरा सी भी हिम्मत मौजूद नहीं थी। होश में आकर वो बार बार खुश होठों पर जबान फेर रहे थे। वो बार बार उठने की कोशिश करते थे और फिर गिर पड़ते थे। भूख प्यास से वो पहले ही निढाल थे, अब वो न जाने कब से रेत के नीचे दफन थे, जिससे इनके जिस्म जैसे मफलूज से होकर रह गए थे। वो इमरान की जानिब खाली खाली नजरों से देख रहे थे। होश में आओ सफदर, उठो, उठकर खड़े हो जाओ जल्दी, हमारे तीन साथी हमारे साथ नहीं हैं, वो सहराई तूफान में हमसे अलग हो गए हैं। जल्दी उठो, हमें इन तीनों को हर हाल में तलाश करना है। अगर इन्हें जल्द से जल्द तलाश करके रेत के नीचे से ना निकाला गया तो वो तीनों हलाक हो जाएंगे। इमरान ने सफदर की तरफ बढ़कर इसके कंधे पकड़कर इसे बुरी तरह से जोड़ते हुए कहा। तब तब पानी पानी, सफदर ने मुश्किल से कहा, जिसे इसके मुंह से आवाज ही ना निकल रही हो। पानी? ओ हाँ, तुम सबको पानी की अच्छा जरूरत है। पानी के बगैर तुम शायद हरकत भी ना कर सको। रुको, मैं देखता हूँ, शायद कहीं पानी मिल जाए, इमरान ने परेशानी के आलम में कहा और पानी की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन वहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं था। मेरे खुदा, मैं क्या करूँ, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है, इमरान ने परेशानी के आलम में कहा। वहाँ हर तरफ खुला मैदान था, जहाँ तक नजर जाती थी चारों तरफ रेत का समंदर ही फैला हुआ दिखाई दे रहा था। मैं इनके लिए पानी कहाँ से लाऊं, अगर इन्हें पानी ना मिला तो ये हलाक हो जाएंगे, इमरान ने इंतहाई परेशान अंदाज में कहा। इसने तनवीर और बाकी साथियों की हालत भी देखी थी, वो सब प्यास से भड़क रहे थे। इमरान पागलों की तरह इधर उधर पानी तलाश कर रहा था, लेकिन इस सहरा में वाकई जैसे पानी का निशान तक नजर नहीं आ रहा था। या अल्लाह रहम फरमा, मेरे साथियों की जिंदगियां अब तेरे ही हाथों में हैं। मेरे तीन साथी गायब हैं और इन सबकी हालत इस कदर मखदूश है कि अगर वाकई इन्हें जल्द से जल्द पानी ना मिला तो इनका भी जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। मेरे मालिक या गफूर रहीम, मदद फरमा, मदद। इमरान ने सर और दोनों हाथ उठाकर हैजानी अंदाज में गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगना शुरू कर दी। वो दुआ मांगते ही हुए एक झटके से दोनों घुटनों पर बैठ गया था। इसकी आंखों में नमी आ गई थी। अपने साथियों की मखदूश हालत ने वाकई से हैजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। वो कुछ देर इसी तरह से दोनों हाथ उठाने दुआएं मांगता रहा। फिर इसने अपना सर जमीन पर रखा और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अपने साथियों की जिंदगियों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना शुरू हो गया। वो इस कदर इन्हमाकी और खुशो खुजू से दुआएं मांग रहा था कि इसकी आंखों से बाकायदा आंसू जारी हो गए थे। या अल्लाह, या गफूर रहीम, मेरी मदद फरमा, मेरे साथियों की जिंदगियां बख्शे, मैं तेरा आजीज बंदा हूँ और तेरे हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने साथियों की जिंदगियों की भीख मांग रहा हूँ। मेरी मदद फरमा मालिक, मेरी मदद फरमा, इनकी जिंदगियां बख्श दे। तू रहीम और करीम है, तू गफूर और रहीम है, और तू मुर्दा जिस्मों में भी नई जिंदगी फूंक सकता है। तेरी बारगाह में रहमतों की कोई कमी नहीं है, मुझे मेरे साथियों को बेहद जरूरत है। मेरे मालिक, हम अपने मुल्क और कौम की भलाई करने के लिए इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ जहाद का जज्बा लेकर निकले हैं। मेरे मालिक, अगर तूने हमें मौत ही देनी है तो हमें ऐसी मौत दे जो शहादत की मौत हो, ऐसी शहादत जिसकी हर मुसलमान तमन्ना करता है। हमें गुमनामी की मौत से बचा ले मालिक, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम सिर्फ शहादत की मौत मरना चाहते हैं। अगर तूने हमारे नसीब में मौत ही लिखी है तो ये मौत हमें मुल्क और इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए नसीब फरमा। हम अपने मुल्क और अपने मुल्क के मुसलमान भाइयों को इस्लाम दुश्मनों से बचाने के लिए आए हैं, जो मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर इन पर अपना तसल्लुत जमाना चाहते हैं। इन दुश्मनों पर हमें फतह नसीब फरमा। मेरी मदद कर मेरे मालिक, हम गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहते। इमरान इंतहा खुशो खुजू से दुआएं मांगे चिल्ला जा रहा था। इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से इसका चेहरा बुरी तरह से भीगता जा रहा था और इसका जिस्म इस बुरी तरह से लरस रहा था जिसे शदीद गर्मी होने की वजह बावजूद इसे सर्दी लग रही हो। वो शिद्दत जज्बात से लरस रहा था और इस वक्त इसकी हालत ऐसी थी जैसे वो अल्लाह से इसी तरह रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस वक्त तक दुआएं मांगता रहेगा जब तक कि अल्लाह की रहमत जोश में नहीं आ जाती और इस कुदरत की तरफ से कोई मदद नहीं मिल जाती। रोते रोते अचानक एक ख्याल कुंडे की तरह इसके दिमाग में लपका तो इसने फौरन सज्जे से सर उठा दिया। इसने सर मोड़ कर रेत पर पड़े अपने साथियों की तरफ देखा और फिर वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो तेजी से सफदर की तरफ लपका। रेड डॉट, ओ मेरे पास रेड डॉट मौजूद है, इसमें से रेत में छुपे हुए अपने साथियों को तलाश कर सकता है। ओहो, तेरा लाख लाख एहसान है मेरे मालिक, जो तूने मेरे दिमाग में रेड डॉट की याद दिला दी है। तो वाकई गफूर रहीम है मालिक, तेरी जितनी भी हमदो सना की जाए कम है। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, लाख लाख शुक्र है। इमरान ने एक बार फिर सजदे में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। पप पप पानी पानी, इसे देखते ही सफदर के मुंह से एक बार फिर हकलाती हुई आवाज निकली तो इमरान फौरन उठा और उसने परेशानी के आलम में रेत से निकले हुए अपने इन साथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया जो प्यासे थे और पानी के लिए बिलख रहे थे। इमरान अपनी कमर से बैग उतारते उतारते रुक गया क्योंकि अपने तीन साथियों को रेत के नीचे निकालने से पहले इसे इनकी प्यास बुझानी थी जो प्यासे थे, वरना वो उठकर खड़े नहीं हो सकते थे। इमरान चंद में सोचता रहा, फिर वो तेजी से सफदर की तरफ बढ़ा और सफदर के सरहाने के पास बैठ गया। इसने अपना दायां हाथ मुंह में रखा और हथेली के किनारे पर इस जोर से काटा कि इसकी दांत इसकी हथेली में गड़ गए और हथेली से खून निकल आया जिससे इसका मुंह भर गया था। तकलीफ की वजह से एक नमे के लिए इसका चेहरा बिगड़ गया था, लेकिन इसने मुंह से हाथ निकाला और इसकी हथेली से तेजी से खून निकल रहा था। दूसरे लम्हे इसने जख्मी हाथ सफदर के मुंह पर रख दिया और इसकी हथेली के किनारे से निकलने वाला खून सफदर के मुंह में टपकना शुरू हो गया। जैसे ही खून सफदर के मुंह में गया, सफदर ने तेजी से खून निकलना शुरू कर दिया। इसका मुंह खून से भर गया था। जो जो सफदर के हलक में खून जा रहा था, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती जा रही थी जिसे बला शुबा जिंदगी की चमक ही कहा जा सकता था। फौरी तौर पर इनकी प्यास बुझाने के लिए इमरान ने इन्हें अपना खून पिलाना ही मुनासिब समझा था। थोड़ा सा खून पीकर इनकी प्यास तो ना बुझ सकती थी, लेकिन हलक तर होने से इनके जिस्मों में इतनी ताकत जरूर आ सकती थी कि वो अपने पैरों पर उठकर खड़े हो जाते। वैसे भी इंसानी जिंदगी बचाने के लिए मैदानी जंग और ऐसी ही खौफनाक जगहों पर जहाँ खाने पीने के लिए कुछ ना हो, हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाता है। बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब पुराने दौर में मुसलमान मैदानी जंग में भूख प्यास से निठाल हो जाते थे तो वो घोड़ों को भी काट कर खा जाते थे और ऊँटों की थैलियों से पानी निकाल कर पीते थे। ये अमल करायत अमेज जरूर था, लेकिन इस वक्त इमरान को और कुछ नहीं सूझ रहा था और वहाँ कहीं पानी का निशान तक नजर नहीं आ रहा था, इसलिए इमरान इनकी प्यास अपने खून से ही बुझा सकता था। इमरान कुछ देर इसके मुंह में खून टपकाता रहा, फिर वो उठा और तेजी से तन्वी की तरफ बढ़ गया। दूसरे लम्हे वो तन्वी के मुंह में अपना खून गिरा रहा था। तन्वी की प्यास का ये आलम था कि वो खून का जायका जाने बगैर खून निकलता चला गया। तन्वी की आंखों में बढ़ती हुई चमक देखकर इमरान कैप्टन शकील के पास चला गया और इसने बारी बारी इन सबको अपना खून पिलाया, जिससे इनकी आंखों में जैसे नई चमक आ गई। जब इमरान आखिर में सिद्दीकी को अपना खून पिला रहा था तो इस वक्त तक सफदर और तन्वी उठकर बैठ चुके थे। खून पीते ही जैसे इनके जिस्मों में नई जान आ गई थी और वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को अपना खून सबको पिलाते हुए देख रहे थे। कुछ ही देर में कैप्टन शकील, खावर और फिर सिद्दीकी भी उठकर बैठ गए। इन सबको खून पिलाकर इमरान का चेहरा जर्द जर्द सा हो गया था और नकाहत की वजह से इसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह उठकर बैठते देखकर इसकी आंखों में बेपनाह चमक आ गई थी। इसने मुस्कुराकर इन सब की तरफ देखा और फिर इसने अपनी जख्मी हथेली पर रेत डालनी शुरू कर दी ताकि खून का इखराज रुक सके। वो सब उठकर खड़े हो गए। इमरान, तुमने हमें अपना खून पिलाया है? तन्वीर ने आगे आकर इमरान से मुखातिब होकर लरसते हुए लहजे में कहा, हाँ तुम सब प्यासे थे और यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था, तुम सब मेरी तरफ खूनी नजरों से देख रहे थे। अगर मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा खून ना पिलाता तो तुम एक साथ मुझ पर झपट पड़ते और मेरा सारा खून पी जाते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसकी बात सुनकर इन सबकी आंखों में बेख्तियार नमी सी आ गई। तब तक तुमने हमें जान बचाने के लिए अपनी इस कदर बुरी हालत होने के बावजूद हमें अपना खून पिलाया है, क्या वाकई तुम इंसान हो? हमसे ज्यादा बुरी हालत तुम्हारी है। और तुम, तन्वीर ने इसी तरह से लरसते हुए लहजे में कहा। वो इमरान की जानिब ऐसी नजरों से देख रहा था जिसे इमरान इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। सफदर और बाकी सबके चेहरों पर भी इमरान के लिए बेपना अकीदत और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात दिखाई दे रहे थे। इनकी हालत ऐसी थी जैसे इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा हो कि वो इमरान को क्या कहें। इमरान जिसकी अपनी हालत भी इस कदर खराब थी कि इससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन इसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की थी और इन सब की जाने बचाने के लिए इन्हें अपना खून पिला दिया था। मैं इंसान ही हूँ, दूसरी दुनिया की मखलूक नहीं, मेरी थोड़े से खून से तुम सबकी जाने बच गई हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है, इमरान ने कदर लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। इसने अपने साथियों को अपना खून पिलाकर इनकी प्यास का किसी हद तक अजाला कर दिया था, लेकिन वो खुद अभी तक प्यासा था और उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, जिसे इन सब ने वाज़े महसूस किया था। नहीं इमरान साहब, तन्वीर ठीक कह रहा है, आप हकीकत में आम इंसानों से कहीं बढ़कर हैं। आपने हमारी जाने बचाने के लिए आज हमें अपना खून पिलाकर हमें अपना मखलूस बना लिया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका ये एहसान कैसे उतारेंगे, सफदर ने भी जज्बाती लहजे में कहा। घबराओ नहीं, वक्त आने पर मैं तुम सब से अपना कर्ज माँ सूद वसूल कर लूंगा, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। इसी लम्हे इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आया, वो लड़खड़ाया। इससे पहले कि वो गिरता, इसी लम्हे तन्वीर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और उसने फौरन इमरान को अपने बाजुओं में थाम लिया। सफदर और बाकी सब भी घबरा कर इमरान की तरफ बढ़े। तत 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 तुम ठीक हो? तनवीर ने घबरा कर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। तुम सब जूलिया चौहान और नौमान को तलाश करो, वो हमारे साथ नहीं है, इमरान ने इसी तरह लड़खड़ाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ कहता, इमरान की आंखें बंद हो गई। ओह वो मिस जूलिया चौहान और नौमान हमारे साथ नहीं है, कहाँ है वो? सफदर ने परेशान होते हुए कहा और चारों तरफ देखने लगा। तुम सब इन्हें तलाश करो, मैं इमरान को संभालता हूँ, तनवीर ने तेज लहजे में कहा। ओह ठीक है, हम देखते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। और वो सब तेजी से मुड़े और दाएं बाएं भागते चले गए। उन्होंने उठते ही अपनी कमरों से बंधी हुई रस्सियां खोल ली थी और रस्सी का एक टूटा हुआ सिरा देखकर इन्हें ये भी समझ में आ गया था कि किस तरह मोंडर में चकराने से रस्सी टूट गई होगी और किस तरह से जूलिया चौहान और नमानी इनसे अलग हो गए होंगे। इन्होंने रेत के वो घड़े भी देख लिए थे जिनमें से इमरान ने इन्हें बाहर निकाला था। इसलिए इन्हें ऐसा ही लग रहा था कि जूलिया चौहान और नौमानी भी इर्द गिर्द रेत में ही कहीं दफन हैं। वो इर्द गिर्द की रेत छानना शुरू हो गए, जबकि तनवीर ने इमरान को बड़े आराम से रेत पर लिटा दिया था। तुमने अपना खून पिलाकर मेरी जान बचाई है इमरान, मैं तुम्हारा एहसान ज्यादा देर तक अपने सर पर नहीं रख सकता। हमारी तरह से तुम भी प्यासे हो और तुम्हें भी पानी की अशद जरूरत है। तुमने मुझे खून पिलाया है, इसलिए अब मैं भी तुम्हें अपना खून पिलाऊंगा। अगर तुम्हारे खून से हमारी जान बच सकती है तो मेरे खून से तुम्हारी जान भी बचाई जा सकती है, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर इसने भी अपना हाथ दांतों से काटा। इसकी हथेली के किनारे से खून निकला तो इसने बहता हुआ खून फौरन इमरान के मुंह में टपकाना शुरू कर दिया। इमरान पर गुनोदगी सी तारी थी और वो मुंह में आने वाला खून यूं निकलने लगा जैसे पानी पी रहा हो। ये तुम क्या कर रहे हो? अचानक सफदर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी और तनवीर ने चौंक कर देखा तो सफदर इसके दाएं तरफ खड़ा था, जो इमरान को अपना खून पिलाते हुए इंतहाई हैरत भरी नजरों से देख रहा था। तनवीर जो इमरान से खुदा वास्ते का बैर रखता था और हमेशा इसके खून का प्यासा बना रहता था, वो इमरान का सर अपनी गोद में लिए इसे अपना खून पिला रहा था। क्यों? अगर ये हमें अपना खून पिलाकर हमारी जानें बचा सकता है तो मैं इसकी जान क्यों नहीं बचा सकता? तनवीर ने कहा। गुड शो, रियली गुड शो तनवीर, तुम ग्रेट हो, रियली ग्रेट हो। मैं तो आज तक यही समझता रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान साहब को कभी कुछ हुआ तो सबसे ज्यादा खुश तुम होगे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम अपने दिल में इमरान साहब के लिए वैसे ही जज्बात रखते हो जैसे जज्बात हमारे दिलों में इनके लिए है, सफदर ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरह ये भी प्यासा था, इसलिए हमें अपना खून पिलाकर अपनी हालत और ज्यादा खराब कर ली थी। अगर मैं इसे अपना खून ना पिलाता तो इसे कुछ भी हो सकता था। जिस तरह तुम सब मेरे साथी हो, इसी तरह ये भी हमारा साथी है और हम सब पर फर्ज है कि हम अपने तमाम साथियों के दुख दर्द में एक दूसरे के काम आए, तनवीर ने कहा। तुम जो भी कहो, लेकिन आज तुमने जो कर दिखाया है इसके बारे में मिस जूलिया और बाकी सब सुनेंगे तो वो भी तुम्हारे कदरदान हो जाएंगे, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तनवीर भी बेख्तियार हंस दिया। अरे अरे, तुम मुझे अपना खून क्यों पिला रहे हो? मैं तुम्हें खून आज शाम दिखाई दे रहा हूँ क्या? अचानक इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा और वो दोनों चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। हलक में खून जाते ही इमरान के जिस्म में भी जिंदगी की नई लहरें सी भर गई थी और वो नीम गुनोदगी में था, इसलिए इसे जल्द ही होश आ गया था। तनवीर को अपना खून पिलाते देखकर वो सीधा हो गया था, इसका मुंह खून से सुर्ख हो गया था। शुक्र है तुमने आंखें तो खोली, वरना मैं तुम्हारी हालत देखकर डर गया था, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान सीधा होकर बैठ गया और फिर इसने सफदर की तरफ हाथ बढ़ाया तो सफदर ने फौरन इसका हाथ थाम लिया और फिर इमरान सफदर का हाथ थामे उठकर खड़ा हो गया। तनवीर ने जख्मी हथेली रेत पर रगड़नी शुरू कर दी थी जिससे इसके जख्म से निकलता हुआ खून रुक गया था। तुम मेरी हालत देखकर डर गए थे और मैं तुम्हारा खून देखकर डर गया हूँ, गजब खुदा का, तुमने मुझे अपना खून पिला दिया है, तौबा तौबा, कितना कड़वा खून है तुम्हारा, मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा होकर रह गया है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और तनवीर इसे तेज नजरों से घूरने लगा। क्या बात कर रहे हैं इमरान साहब, आपको तो तनवीर का एहसान मानना चाहिए, इसने आपको अपना खून पिलाया है। आपकी हालत वाकई बहुत खराब थी, अगर तनवीर आपको अपना खून ना पिलाता तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, सफदर ने तनवीर की हिमायत में बोलते हुए कहा। एहसान, कैसा इंसान, मैं थोड़ी देर पहले अच्छा भला इंसानों में शुमार था और अब तनवीर का खून पीकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खून पीने वाला जानवर बन गया हूँ, और वो भी तनवीर का खून पीकर, इमरान ने कहा। क्यों, क्या मेरे खून में जहर मिला हुआ था जो तुम्हारा मुंह कड़वा हो गया है, तनवीर ने इसे घूर कर कहा। ऐसा वैसा जहर, तौबा तौबा, मुझे तो अभी से अंदर से अपनी आंतें कटती हुई महसूस होना शुरू हो गई हैं, इमरान ने पेट पकड़ते हुए कहा। इमरान साहब प्लीज, सफदर ने कहा। क्या प्लीज, इसका खून पीकर मेरी जो हालत हो रही है, ऐसी ही हालत तुम्हारी होती तो तुम्हें पता चलता, बहरहाल कड़वा ही सही, लेकिन तनवीर ने मुझे अपना खून पिलाकर मेरे खून का हिसाब बराबर कर दिया है, वरना मैं तो ये सोच सोच कर ही खुश हो रहा था कि मेरा खून पीकर इसे मेरा कुछ तो एहसास हो जाएगा और खुद ही मेरे रास्ते से हट जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ही इसके रास्ते से हटना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो, तनवीर ने इसे घूर कर पूछा। वही जो तुम समझ रहे हो, इमरान ने इसी अंदाज में कहा और तनवीर एक तवील सांस लेकर रह गया। इमरान साहब, मिस जूलिया चौहान और नोमाने का कुछ पता नहीं चल रहा, शायद मोंडर में चकराते हुए हमारी रस्सियां टूट गई थीं और वो तीनों हमसे अलग होकर न जाने कहां जाकर गिरे होंगे, मुझे तो इन तीनों के बारे में सोच सोच कर अब खौफ आना शुरू हो गया है, अगर खुदा न खास्ता इन्हें कुछ हो गया तो, सफदर ने इमरान की तवज्जो जूलिया चौहान और नोमाने की तरफ दिलाते हुए कहा। ओ हाँ, इन्हें तलाश करना बेहद जरूरी है, वरना वो वाकई हमेशा के लिए रेत में ही दफन रह जाएंगे, इमरान ने कहा। इसने फौरन कंधे से अपना बैग उतारा जो बस तो इसकी कमर से बंधा हुआ था, इन सबकी कमरों पर सफरी बैग बंधे हुए थे जो इन्हें हारगन के हेलीकॉप्टर से मिले थे, इन बैग्स में इनकी पसंद का असला था जिनमें मशीन गने, मशीन पिस्तौल, इनके फाजिल मैगजीन और फाजिल राउंड्स के अलावा हैंड ग्रेनेड, राडर्स, बम और मिनी मिसाइल गने भी मौजूद थी। इन बैगों को इन सब ने हेलीकॉप्टर से निकलने से पहले ही अपने कमरों से बांध लिए थे ताकि आने वाले खतरात का वो आसानी से मुकाबला कर सकें। इमरान ने अपनी खुफिया जेबों से कई चीजें निकाल कर इस बैग में रख ली थी जो तूफान में फंसने के बावजूद इसके बैग में ही थे। इमरान ने बैग उतारकर नीचे रखा और इसे खोलने लगा। बैग खोलकर इसने एक आला निकाला जिस पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी। आले पर लैपटॉप कंप्यूटर जैसा के कीबोर्ड भी बना हुआ था। इमरान ने साइड पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो आले की स्क्रीन रोशन हो गई और साथ ही कीपैड के हुरूफ भी चमकने लगे। ये क्या है, सफदर ने हैर भरी नजरों से इस आले की तरफ देखते हुए कहा। तनवीर भी गौर से इस आले की तरफ ही देख रहा था। इसे रेड डॉट कहते हैं और इस आले की मदद से जमीन में छुपे हुए खजाने तलाश किए जाते हैं, इमरान ने कहा। खजाने, तो क्या अब तुम यहाँ खजाने तलाश करोगे, तनवीर ने इसे घूर कर कहा। चौहान और नोमानी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जूलिया मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, जिसे अगर मैंने खो दिया तो मैं कुंवारा ही मारा जाऊंगा, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। इसने एक और बटन प्रेस किया तो आले के नीचे लगा हुआ कैमरा ऑन हो गया और उन्हें स्क्रीन पर नीचे रेत दिखाई देने लगी, साथ ही आले के नीचे लगी हुई रेजर लाइट भी ऑन हो गई थी। जैसे ही रेजर लाइट ऑन हुई, इन्हें रेत खासी गहराई तक जाती हुई दिखाई देने लगी। ओ, इस आले की मदद से तो हम काफी गहराई तक देख सकते हैं, सफदर ने कहा। हाँ, शुक्र करो कि मोंडर में जाने के बाद मेरा सामान मेरे पास रह गया था, वरना हमारे लिए इन तीनों की तलाश मुश्किल हो जाती। तुम सबको गायब देखकर मैं घबरा गया था। ये नॉवेल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 18 में समाप्त फरमाएं।